कर्मकांड शिविर लेक्चर नंबर 17।
ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य।
सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमीचंद जी ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के आधार से पंडित डोडरमल जी ने समय ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है और हम यहाँ उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। स्थिति बंध का अपना प्रकरण चल रहा था। स्थिति का बंध होता है तो उसमें एक समय में जो परमाणु का ग्रहण हुआ है तो उसको स्थिति की अपेक्षा उसकी निषेक रचना बताई जाती है। तो वहाँ कहते हैं आबादा को छोड़कर उसके ऊपर प्रति समय में एक एक निषेक, यानी जिनकी स्थिति समान है ऐसे परमाणुओं के समूह को हम निषेक कहते हैं। तो बंद के समय से लेकर, जैसे यहाँ जो चित्र बनाया है पीछे से आपको लाइन्स नहीं दिख रही है पर अपने अपने चार्ट में आप देख सकते हैं, ये नीचे हमें वर्तमान समय हम नीचे बताते हैं, भविष्य के समय ऊपर बताए जाते हैं। तो यहाँ बंद हुआ, एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु बंद है, अनंत परमाणु बंद है, तो वो परमाणु में कैसी कैसी स्थिति पड़ी। तो ये जितना आबाधा काल है उसमें यहाँ कोई निषेक नहीं है, यानी इतनी स्थिति वाले कोई परमाणु नहीं है कि जो दूसरे समय तीसरे समय आदि समयों में खींच सके। तो हमने 70 कोड़ा कोड़ी का हिसाब बताया था, तो आबादा का कितना है उसका तो 7000 वर्ष। तो ये जो 7000 वर्ष के बाद प्रथम समय में खिरने वाले ऐसे सब परमाणु, यदि हम एक लाइन में उसको रखेंगे तो उसको हम कहेंगे ये पहला निषेक है। बंद के समय ये पोजीशन है, उसमें से कुछ परमाणु ऊपर नीचे होंगे उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। बंद का समय यदि यहाँ बंद हुआ तो उस समय जितने परमाणु बंद है उसमें हम ऐसी निषेक रचना बताएंगे। तो ये पहला निषेक है, ये किस कभी खिरने योग्य है, बंद के समय से लेकर 7000 वर्ष और एक समय में। हम अभी मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्थिति संबंधी बात कर रहे हैं। हर एक कर्म में अपने अपने स्थिति प्रमाण समझना। दूसरा निषेक है 7000 वर्ष और दूसरे समय में खिरने योग्य है, इसमें जितने परमाणु है अनंत उन सबकी स्थिति कितनी पड़ी अभी 7000 वर्ष और दो समय, उसके ऊपर 7000 वर्ष तीन समय, इस तरह से बढ़ते बढ़ते अंतिम निषेक जो है लास्ट चरम यानी अंतिम, उसके सभी जो कर्मों की परमाणु की स्थिति कितनी है बंध के समय से लेकर इसकी स्थिति अगर गिनेंगे तो वो 70 कोड़ाकोड़ी सागर है। परंतु उदय काल कब शुरू हुआ 7000 वर्ष के बाद, बंध के समय से बाद 7000 वर्ष और एक समय में उदय शुरू हुआ, वो उदय कब तक चलेगा, प्रति समय इसका एक एक निषेक खिलेगा, किसके साथ अन्य अन्य समय में बंधे वाले जिसकी जिसकी स्थिति पूरी होती है उसके साथ ये अपना अपने समय पर खिलेगा। क्योंकि प्रति
छोटी लाइन का क्या,
हाँ आपने कहा नीचे बड़ी लाइन और ऊपर ऐसी, और आपकी क्यों ऐसे कोई ऐसी फैशन क्यों कर रहे हैं आप। तो पहले समय में जो खिरने योग्य परमाणु में संख्या सर्वाधिक होती है, ऊपर से विशिष्ट प्रमाण में घट होती चली जाती है, तो घटते 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 आधी हो जाती है, उसको कहेंगे गुण हानि, गुणित प्रमाण में हानि, यानी इसको द्विगुण हानि भी कहते हैं, आधी हो जाती है। यहाँ परमाणु की जितनी संख्या है उससे आधी होती है, तब तक के निषेकों की सबकी मिलकर क्या संज्ञा है, तो गुणहानि। इसको मैं एक गुणहानि हुई। जैसे मान लेते 6300 परमाणु बांधे एक समय में, 6300, तो पहले निषेक में 512 परमाणु है, फिर 32 घटते 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 वो कितने हो जाएंगे, आधे 256। तो 256 होने के पूर्व तक के जो सारे निषेक है, 8 वो घटते 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 आधे हो गए, तो वो 8 समयों के जो प्रमाण है 7 निषेकों का, उसको हम कहेंगे एक गुणहानि। उसके बाद क्या होगा, वो 16 से घटेंगे, तो 256 के बदले में 128 हो गए, उसके पूर्व तक ये दूसरी गुणहानि, तीसरी, ऐसे आधे होते 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 चले जाएंगे। ये तो हमने आपको समझाने के लिए 63 बताए, यथार्थ में तो अनंत होते हैं, और उसके भी यहाँ तो हमने 8 समयों में वो आधे होते कह दिया, वहां तो बल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात निशोक जाकर फिर वहां आधे होते हैं, फिर उसके भी आधे हो गए, उसके भी आधे हो गए, इस तरह से उसको कहेंगे गुणहानि। यानी वो एग्जैक्ट कितने नंबर में यहाँ आते हैं, ये सारा गणित है, और उसकी वैल्यू कैसे करना है इसकी भी गणित है, वो अभी हम नहीं ले रहे, पर आपने पूछा ना ये बड़े अक्षर क्यों बताया है, क्योंकि उसमें परमाणु ज्यादा है और ऊपर क्रम से हीन होते चले जाते हैं, बिल्कुल वो ज्योमेट्रिकल जो रिसेशन या प्रोग्रेशन बताते हैं उस प्रोपोर्शन में सब आता है, उसके एग्जैक्ट गणित निकाल सकते हैं। गुण हानि यानी गुणित प्रमाण में हानि, दो गुणा हानि यानी आधा हो जाना, दो गुणा हीन हो गया। यहाँ जितने नंबर ऑफ परमाणु है हमने बताया, यहाँ 512 थे, वो घटकर आधे हो गए, तो उसको क्या कहेंगे, यानी दो गुणा हीन हो गए, दो गुणा हानि हो गई उसमें, इसको गुण हानि कहने में आते हैं। गुणहानि में निषेकों का प्रमाण असंख्यात में है, असंख्यात निषेक जाकर वो आधे हो गए, अनंत को आधा अनंत हुआ। समझाने के लिए हम 6300 की बात करते हैं, ये हमारे कर्णानियोग परिचय में ये सारे उदाहरण लेके उसको समझाया है, यहाँ पर भी है, हम उसको छोड़ना चाहते थे। हाँ निकालो पेज नंबर 180, हम नहीं लेना चाहते थे, यहाँ पर आपने पूछा तो लेना पड़ेगा अभी, है ना। आपका ये प्रश्न है कि सत्ता में कितने परमाणु पड़े रहते हैं, क्योंकि एक समय में एक समय प्रबद्ध बनता है, दूसरे समय में दूसरा, ऐसा हर समय बनता है और हर समय खिलता है, तो सत्ता में कितना पड़ा रहता है। तो हमने यहाँ अभी बताया है एक गुणहानि का प्रमाण कितना है, असंख्यात। डेढ़ गुणहानि का प्रमाण कितना होगा, उससे डेढ़ गुना, उस समय प्रबद्ध को डेढ़ गुणा गुणित, यानी गुणहानि के डेढ़ गुना प्रमाण जो असंख्यात है उससे गुणा करो, जितनी संख्या आएगी उतने परमाणु सत्ता में पड़े रहेंगे, उसको कहते हैं डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। उसका सारा कैसे कैलकुलेशन करना, किस तरह से उसकी, वो सारी बहुत विस्तार की बात है, वो अर्थ संदृष्टि में भी बताया है और यहाँ पर भी जो डेली प्रवचन है उसमें भी बहुत विस्तार से बताया, वो जीवकांड में भी बात आई थी, यहाँ पर भी बताई। देखो अभी हम यहाँ निषेक रचना की बात थोड़ी देख रहे थे, निषेक रचना का अर्थ क्या देखा हमने, आबाधा को छोड़कर ऊपर जो निषेकों की जो जितने परमाणु की जो स्थिति है उसके अनुसार हमने उसको उसका आलेख बनाया, ग्राफ बनाया। पहले निषेक में सर्वाधिक परमाणु है, दूसरे निषेक में कम है, तीसरे में सबसे उससे भी कम, इस तरह से वो जितने परमाणु बंधे हैं उसमें भी उसके पहले निषेक के परमाणु निकालने का भी फॉर्मूला है, एक एक परमाणु का हिसाब है शास्त्र में, कैसे कहाँ बनते हैं, कितने कौन से निषेक में कितने परमाणु रहेंगे, अंतिम निषेक में कितने हो, ये समझाने के लिए छोटी फिगर्स लेके यहाँ शास्त्र में समझाया गया है। यथार्थ में तो अनंत में होता है, वो अनंत के भी कैसे लिखना, कैसे वैल्यू है, उसको सिंबॉलिक गणित के द्वारा शास्त्र में बताया है, इसको कहते हैं अर्थ संदृष्टि। उसके भी कैसे कैलकुलेशन करना, 1+1- या गुणा करना, उसका बहुभाग करना, वो बहुत बहुत जिसको कहेंगे आसान है, चिन्ह देखेंगे तो घबराहट होती है, मतलब जैसे हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, ए ऐसा लिखना, बी ऐसा लिखना, ए ऐसा लिखना, ऐसे ही वहां पर उन्होंने टोडर मंजी साहब ने एक एक संदृष्टि को बताया कैसे लिखना और फिर अंकों के ऊपर कौन सी साइन करेंगे तो उसका क्या अर्थ होता है, माइनस है, प्लस है, उसका बहुभाग क्या क्या, ये इतने हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो बहुत मैटर हो जाता है और वो सिंबल वहां लिखेंगे तो उसके उसको देख के एग्जैक्ट बात ख्याल में आती है। दिखने में तो बहुत कठिन है परंतु समझने पर वो बहुत अच्छा है, सरल हो जाता है, विषय भी समझ में आता है और उसका बहुत बड़े बड़े गणित भी चुटकी सर के कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि असंख्यात की असंख्यात फिगर हो जाएगी उसकी टोटल कैसे करेगी आप, तो उसके सारे फॉर्मूले भी उसमें अंदर है और वो कैसे करना है उसकी विधि भी उन्होंने, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है संस्कृत आदि जो टीकाएं हैं कहीं पर भी उस सिंबॉल्स के अर्थ नहीं बताए, डायरेक्ट सिंबॉल बताए हैं और डायरेक्ट उसके गणित बताए हैं। टोडरमंजी साहब की ये विशेषता है कि एक एक सिंबॉल का अर्थ क्या है, वो कैसे ड्रॉ करना, उसका अर्थ कैसा है, ये उन्होंने विस्तार से समझाया है और फिर उसके गणित करके बताया। आपके पास वो जीवकांड भी है, कर्मकांड का दूसरे भाग में, हर एक में लास्ट में उसके अर्थ संदृष्टि नामक अधिकार उन्होंने अलग बताया, यानी पूरा जीवकांड हो गया उसके बाद उसके अर्थ संदृष्टि का प्रकरण अलग। मूल संस्कृत टीका में जहां वहां हर एक प्रकरण में वो अर्थ संदृष्टि थी तो हम पढ़ने जाए तो बीच बीच में वो सिंबल्स आते हैं, उसके चिन्ह आते हैं तो अर्थ तो समझ में नहीं आता, छोड़ देते हैं लोग वहीं पर, ये अपने बस की बात नहीं है। तो टोडर मंजी साहब ने सभी संदृष्टियों को इकट्ठा करके उसका अलग से अधिकार बनाया और जहां वहां वो अंक संदृष्टि ने छोटी फिगर्स करके हमको विशेष समझाया, जैसे यहाँ 6300 परमाणु लेकर वो पूरी विधि बताई और यथार्थ में जो संख्या है जो सिंबल से वो अलग से बताया, वहां पर भी पूरा विषय फिर दोबारा समझाया, यानी वो अर्थ संदृष्टि अधिकार हम पढ़ते हैं तो वो सारा ही जैसे हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हमारे घर में वो सारा हमने सिखाया था बोर्ड के ऊपर, जैसे कलर चौक से जल कलर पेन से व्हाइट बोर्ड पर, और उसकी वीडियो भी कर करके रखी है तो आप इसके साथ उसको देखो सुनो तो सब समझ में आ सकता है, यानी वो इतने कठिन गणित है मगर वो अर्थ संदृष्टि के द्वारा अत्यंत सरल हो जाते हैं। ये जो आपने डेढ़ गुणा अनुगुणित समय प्रबद्ध बताया ना, पूछा आपने उसके कैसे निकालना, वो पूरी विधि हमने उस पर बोर्ड पर भी बताई, क्योंकि केवल पढ़ते जाते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है, वो कुछ समझ में नहीं आता है, वो विषय अभी हम यहाँ नहीं लेने वाले हैं। अभी आपने पूछा तो ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि किसी ने पूछा गुणहानि क्या है, किसी ने पूछा क्या है, है ना, तो जरा पढ़ लेते हैं यहाँ पर 180 पेज, पेज नंबर 180। विवक्षित कर्म के परमाणु 6300, मान लेते कि 6300 परमाणु का बंध हुआ, आबादा छोड़कर स्थिति का प्रमाण 48, आबादा छोड़कर कितने निषेक बने तो 48, एक गुणहानि 8 समय प्रमाण, यानी 8 निषेक जाने पर उसका प्रमाण आधा होने वाला है, वहां संपूर्ण स्थिति में कुल गुणहानि कितनी होगी जिसको नाना गुणहानि कहते हैं, नंबर ऑफ गुणहानियां कितनी होगी, 48 निषेक बनेगी, 8 निषेक में आधा होता है यानी एक गुणहानि होती है, तो 48 में कितनी होगी, 48/8 6 गुणहानियां होगी, यहां तक बात कर लिया। 2 गुणहानि का प्रमाण कितना है, 16, क्यों 2 गुणहानि, क्योंकि वो हिसाब आगे कैसे निकालने उसके लिए बात है। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है तो 64, ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि क्या होती है, नंबर ऑफ गुणहानियां कितनी देखी हमने, 6, एक गुणहानि का प्रमाण 8, नाना गुणहानियां ने नंबर ऑफ गुणहानियां 6, तो 6 बार 2 लिखकर आपस में गुणा करना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 64 हुआ, इसको कहते हैं अन्योन्य अभ्यस्त राशि, यहां लिखा है ब्रैकेट में उसका अर्थ, नाना गुणहानि प्रमाण 2 अंक लिख कर आपस में गुणा करने पर अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है, वो दो 6 बार 2 लिख कर गुणा किया तो 64 आ गई। प्रथम गुणहानि में 3200 परमाणु फिरते हैं, अभी ये सारा प्रमाण कैसे निकालना वो सब बताएंगे बाद में, कैसे कैलकुलेशन किया उन्होंने। कैलकुलेशन ऐसा करना है ना, टोटल नंबर ऑफ परमाणु 6300 थे, अन्योन्य अभ्यस्त राशि 64 है, अन्योन्य अभ्यस्त राशि में से एक माइनस करो तो 63 आते हैं, तो 63 से वो 6300 को भाग देना तो 100 आए, तो अंतिम छठी गुणहारी में द्रव्य होगा 100, पांचवी में होगा 200, चौथी में होगा 400, इस तरह से नीचे नीचे आना, तो 3200 पहली में है, दूसरे में 1600। द्रव्य का अर्थ होता है 8 निषेकों का मिलकर टोटल नंबर ऑफ परमाणु, आठों में मिलकर परमाणु की संख्या कितनी है, पहले गुणहारी में 3200, दूसरे में आधी यानी 1600, तीसरे में उससे आधा यानी 800, 400, 200 और 100। ये तो गुणहारी की टोटल द्रव्य, अभी हमने प्रत्येक निषेक में कितना है नहीं दिखना है, वो भी निकालना है ना। ये दृष्टांत मूल आगम का है, ये हाँ डोलोमल जी साहब ने भी स्वयं नहीं तैयार किया, वो मूल आगम के लिए जो जिसको कहेंगे अंक संदृष्टि, उसको सभी आगम में यही गुण ये गुणहानि कहने से आठ को मान्य है सबको, यही सब जगह संदृष्टि यही दी जाती है। तो यहाँ आगे लिखा देखो, एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि का भाग सर्व द्रव्य ने टोटल द्रव्य 6300 को देने पर अंतिम गुणहानि में द्रव्य का प्रमाण आता है, द्रव्य ने परमाणु नंबर ऑफ परमाणु ये 100 आ गए। प्रथम गुणहानि का द्रव्य 3200, अभी क्या है वो भी बहुत डिटेल है, प्रति निषेक जितनी संख्या कम हो गई उसको चय कहते हैं, वो चय का प्रमाण निकालने का भी तरीका है, क्योंकि 3200 तो 8 में है तो एवरेज कितना आया, 8 में मिलकर 3200 है, एवरेज कितना आया, 400 आया ना, तो 400 को कहेंगे मध्यधन, मध्यधन मध्यम धन या मध्यधन यानी एवरेज, एवरेज 400 आया, परंतु प्रत्येक निषेक में समान नहीं है, अगर समान रखते तो 8 में 400-400 आ जाते हैं, नीचे में ज्यादा है ऊपर में कम है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, कितनी बार कम हुआ, 7 बार कम हुआ, तो 8 में से एक कम करो, 7 का आधा करो, 3.5 हो गया, उसको एवरेज को भाग दो, वो एक्चुअली एक कम गुणहानि का आधा यानी 3.5 को 16 में से माइनस है, वो क्यों क्या वो बहुत लंबा चौड़ा गणित है, ये सारी विधि तो यहाँ बताई है। अभी आपको डिटेल चाहिए तो करना नहीं, परिचय पुस्तक है ना वो मेरे, उसमें सब बातें, अपना क्या है विषय बहुत लंबा हो गया, आपके सामने ना मेरे सामने हाथ में बोर्ड है कोई की जिस पर मैं समझाऊं, यानी वो इस तरह से वो जो हर निषेक में कितना कम होता है उसका प्रमाण भी मिलता है, और वो पहले निषेक का प्रमाण भी मिलता है, चय का प्रमाण, चय ने जो डिफरेंस फिक्स डिफरेंस है यहाँ 32 आता है, वो 32 को 2 गुना ही 16 से गुना करो तो यहाँ 512 प्रमाण पहले निषेक में आ जाएगा। अभी ये चय जो मैंने कहा उसका प्रमाण निकालने का भी तरीका यहाँ बताया है कि 16 दो गुणहानि में से वो 7.5 माइनस कर दो, 7.5 तो उसका जो प्रमाण आता है उससे वो एवरेज को भाग दो, तो ये चय वगैरह कैसे निकालना है सब विधि है डिटेल में, फास्ट बोलने से कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये शास्त्र में तो कितने परमाणु बनते हैं उसका क्या हिसाब है, कितने गिरते हैं लास्ट में कितने रहते हैं, सब सबका हिसाब है, इतना गणित है इसमें, वो जयदोला वगैरह में आप बहुत एक एक परमाणु का हिसाब है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म का बनता है तो अंतिम ये कितने उत्कर्षण अपकर्षण क्या क्या होते हैं, तो अंतिम निषेक में कितना परमाणु रह सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम उसकी भी संख्या की बिल्कुल डेफिनेट संख्या मान, यानी इतना अगाध है और हमारे मुनियों ने तो ये सब लिख के रखे हैं। अभी हम स्थूल रूप से देखेंगे, जो हमारे डेली प्रवचन के जो लेक्चर्स है उसमें इसकी बहुत विस्तार से चर्चा है, अभी हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी स्थूल बातें यहाँ देखेंगे। अपना विषय क्या चल रहा था, आबाधा। आबाधा का छोड़कर ऊपर जो निषेक रचना होती है वो इसी पद्धति से, जो टेपरिंग जिसको कहेंगे, इसी पद्धति से होती है। नीचे का निषेक बड़ा, उसमें द्रव्य ज्यादा, ऊपर कम। अब आगे बढ़ते हैं। दोपहर में जो बात आई थी ना, कारमान शरीर की और कारमान नाम कर्म की, वो जो कन्फ्यूजन चल रहा था, क्योंकि हमें पांच प्रकार के शरीर मालूम है। कारमान शरीर किसको कहते हैं, तो जो आठों कर्मों का जो स्कंद हुआ है उसको कारमान शरीर कहते हैं। वो बात अलग है, कारमान शरीर नाम का नाम कर्म है वो बात अलग है। मुझे बाद में ख्याल है कि ये लोगों का क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, ये औदारिक शरीर जुदी बात है। औदारिक शरीर तो आहार वर्गण से बन चुका है, यह औदारिक शरीर है, पर औदारिक शरीर नाम कर्म नाम का जो कर्म का भेद है, उसके उदय में क्या होता है, औदारिक शरीर आदि के परमाणु का ग्रहण हो जाता है और वो आहार वर्गण ग्रहण करके उसको औदारिक शरीर रूप से परिणाम आता है। समझ में, औदारिक शरीर नाम का एक नाम कर्म है, उसके द्वारा क्या होता है, जीव में ऐसा योग ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न होती है कि जो औदारिक शरीर संबंधी वर्गना जो आहार वर्गना है उसको ग्रहण करे, और ग्रहण करने के बाद वो पर्याप्ति वगैरह वो जो हमने पहले सीखा था, तो उसमें क्या है, तो शरीर रूप रचना हो जाती है और ये औदारिक शरीर बन जाता है। ये औदारिक शरीर तो उसका प्रोडक्ट हो गया, परंतु बना कैसे, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में आहार वर्गना के परमाणु ग्रहण करके औदारिक शरीर की रचना हुई। ऐसे ही कारवान शरीर नामक जो स्कंद है आठ कर्मों का हो या अरिहंत को चार कर्मों का हो, वो कैसे बना है, तो कारमान वर्गना से बना। तो कारमान वर्गना का ग्रहण क्यों हुआ, कारमान शरीर नाम का जो नाम कर्म है उसके उदय में जीव के प्रदेशों में कर्म को ग्रहण करने की शक्ति हुई, जिसको हम योग कहते हैं। योगों का कारण क्या है, जो पांच अलग अलग नाम कर्म है वो नाम कर्म के उदय में उस जाति की वर्गनाओं का ग्रहण करता है जीव, और उस शरीर रूप से परिणाम आता है। औदारिक शरीर नाम कर्म, वैकिरिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म कौन सी वर्गना से बने हैं, मैंने पहले भी पूछा था। बोलो, आहार वर्गना के कारमान वर्गना, औदारिक शरीर आहार वर्गना से बना है। औदारिक शरीर नाम का नाम कर्म रे कर्म का भेद है, वो कारमान वर्गना से बना है। उसका उदय होता है, उसका फल मिलता है, क्या मिलता है, जीव के प्रदेशों में कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, योग उत्पन्न होता है। ये शक्ति नहीं है, सारा विवाह की बात चल रही है, समझ में आती बात। तो उसके वो कारमान वर्गना का कर्म बनता है, तो हम उस कर्म का जो स्कंद बन गया टोटल, उसको भी कारमान शरीर कहते हैं। यहां कुछ क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। वापस
डॉक्टर साहब का प्रश्न है, डॉक्टर साहब का प्रश्न था, और औदारिक शरीर के बंध विच्छेद के चौथे गुणस्थान में हो गए,
औदारिक शरीर की,
औदारिक शरीर नाम
कर्म की बंध की विच्छित्ति चौथे में हुई, बरोबर।
प्रति समय औदारिक शरीर के परमाणु को ग्रहण करता ही है जीव, वो कहना ऐसा है कि विच्छित्ति हो गई तो फिर प्रति समय वो ग्रहण नहीं करना चाहिए।
हाँ, आपका ये प्रश्न है, औदारिक शरीर नाम कर्म के बंध की विच्छित्ति हुई कहाँ, चौथे गुणस्थान में, और वो भी कौन बांध रहा था, तो देवनारकी बांध रहा था। मनुष्य क्या कर रहा था, तब मनुष्य देवगति और वैकिरिक शरीर नाम कर्म बांध रहा था, वैकिरिक शरीर नाम कर्म का बंध किया था, तो औदारिक शरीर की बंध की विच्छित्ति हुई। तो हम जो मनुष्य जीव है वो तेरहवें गुणस्थान तक तो औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहे हैं ना, तो क्यों, तो ग्रहण करने का कार्य बंध का है कि उदय का है, तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कहां तक चल रहा है। जो देव औदारिक शरीर का नाम कर्म का बंध कर रहे थे ना, वो स्वयं उनको वैकल्पिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा था, नहीं समझे। बंद यानी उसका बंद रुक गया है। अरे पर पहले बंदे हुए सब पड़े हैं ना अंदर। फल या कार्य तो उदय का होता है, वो पर्टिकुलर कर्म कहाँ बनना रुक गया उसकी बात तो कर दी, क्योंकि समय दृष्टि मनुष्य है वो तो वैकृत शरीर नाम कर्म बांधेगा देवगति के साथ, वो मनुष्य गति बांधता ही नहीं है, वो अवतारिक शरीर अंगोपांग बांध ही नहीं रहा, वो तो थ्रू आउट आठवें गुण स्थान तक वैकृत शरीर और अंगोपांग नाम कर्म का बंध कर रहा है, उसका कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं होने वाला है उसका। परंतु उसके जो पूर्व में बंधे हुए सत्ता में पड़ रहे उसका उदय चल रहा है ना, हमारे अभी उदय की उच्चति नहीं हुई ना, ये प्रक्रम हुआ नहीं है और हम बंधक में ही ऐसा, अरे बंध रुक गया तो वो कर्म ही नहीं रहा ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, बंधे हुए पड़े हैं अभी, यहाँ बंधे बंधेंगे नहीं, उदय चलेगा उसका। तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक गया आठवें में, तो अभी तेरहवें में तीर्थंकर कैसे हो गए, अरे उदय तो वहां शुरू हो जाएगा, अभी उदय शुरू भी नहीं है उसका, सत्ता में पड़ा है, उसका फल नहीं मिलता, फल तो जब उदय में आता है तब हो जाता है। तो जो जो हमने बंधे हुए चित्ती देखी है, तो जिसका उदय चल रहा है उसका कार्य भी चल रहा है। कार्मण शरीर नाम कर्म के बारे में भी ऐसा समझना, कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय में क्या होता है, नए कर्म ग्रहण होते हैं और वो कहां तक चलता है, तेरहवें गुण स्थान के अंत समय तक चलता है, पर उसका बंध रुक गया ना आठवें में, रुकने दो ना, परंतु जो पड़ा है बंधा हुआ उसका उदय तो चल रहा है। अब कहेंगे वो तेरहवें के बाद वो क्या निकल गया कि सत्ता में से है, परंतु अभी उदय नहीं आ रहा है। चौदहवें गुण स्थान में कार्मण शरीर नाम कर्म का उदय नहीं हो रहा है, सत्ता में पड़ा है वो, उसका उदय रुक गया है, उदय की विच्छित्ति हो गई है, नया ग्रहण नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से संवर हो गया अभी उसका, क्योंकि सत्ता में पड़ने से कुछ नहीं होता है उसका, उदय रुक गया कार्य रुक गया, ख्याल में आई ना ये बात। कार्मण शरीर का स्कंद जुदी बात है और कार्मण शरीर नाम कर्म जुदी बात है। ग्रहण करना कहो, कार्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित होती है कहो, उसी को बंध कहते हैं। ग्रहण यानी कहीं बाहर से ग्रहण नहीं होता, जितने आत्म प्रदेशों में राग द्वेष रूप परिणम चल रहा है वही की कुछ कार्मण वर्गना कर्म रूप परिणमती है। अब जो 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 मूल कर्म रूप परिणमित होने वाली कार्मण वर्गना भी जुदी जुदी है, जो ज्ञानावरण रूप परिणमेगी वो वर्गना ही जुदी है, जो मोहनीय रूप परिणमेगी वो वर्गना ही जुदी है।
कार्मण शरीर नाम कर्म की उदय विच्छित हम तेरहवें गुण स्थान में कहेंगे।
हाँ, बंध विच्छित आठवें में हो गई।
हाँ, विच्छित तेरहवें में।
हाँ, तेजस कार्मण सब अवतारिक सभी वहाँ।
चौदहवें में उदय नहीं है तो सीधा डायरेक्ट क्षय फिर हो जाएगा, उसको क्षय कहेंगे।
वहाँ तो फिरना तो हर समय, हम आपका भी अवतारिक शरीर के परमाणुओं का फिरना चल रहा है, हमारे शरीर शरीर के परमाणुओं का, वो कर्म की बात नहीं है। जो शरीर बंधा है तो उसमें भी निषेक रचना हुई है, जैसे कर्म हर समय अनंत खिल रहे हैं, इस शरीर के भी अनंत परमाणु हर समय खिल रहे हैं, उसका एक निषेक एक एक निषेक यानी एक एक समय प्रबद्ध ग्रहण हो रहा है, और पहले में जो जो बंधे उसमें से एक एक निषेक खिल भी रहा है। यहाँ कायम तो हम स्वयं है और वो धूल है शरीर के परमाणु की आ रही है और जा रही है, और फिर हम पहले पहले उठ पर पहले नक्की करते सब बराबर ठीक ठाक है ना, क्यों, और हर साल हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं ना, किसका, शरीर का, अरे वो शरीर के परमाणु कब के कहीं चले गए, दूसरे और भी नए आ गए। हाँ, आगे बढ़ेंगे, ये कार्मण शरीर का कंफ्यूजन कुछ दूर हुआ कि नहीं हुआ, कि जो ज्यादा बढ़ गया।
नाम कर्म तो इधर आता
है, 93 नाम कर्म है, गति नाम कर्म, गति, जाति, शरीर, शरीर में पांच प्रकार के शरीर नाम कर्म है, कार्मण शरीर जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, कार्मण शरीर नाम कर्म। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय मनुष्य और तीर्यंचों के होता है, वो जो आहार वर्गना ग्रहण करते उसमें से औदारिक शरीर बनता है, देव और नारकियों को वैक्रिय शरीर नाम कर्म का उदय है, वो जिन पर आहार वर्गण, वो आहार वर्गण भी थोड़ी आगे की जो एडवांस वाली जो थोड़ी सूक्ष्म है, उससे वैक्रिय शरीर बनता है। मुनिराज जो जिनके आहार शरीर नाम कर्म का उदय है, बनता तो है वो सातवें आठवें में, उदय छठे में हो सकता है, तो वहाँ वो आहार शरीर बनता है। तो आहार शरीर बनता है कैसे बनता है, तो जिसने आहार शरीर नाम कर्म बांधा है, और जिन मुनिराज का उदय हुआ छठे में, उदय होना जरूरी नहीं है, उदय हुआ, उनके आहार शरीर बनता है किसे, आहार वर्गण से। आहार शरीर नाम कर्म के उदय में जो परमाणु ग्रहण करता है उससे आहार शरीर बनता है। तेजस शरीर और कार्मान शरीर नाम कर्म का उदय प्रति समय अनादि से चल रहा है, और तेजस और कार्मान के परमाणु उसकी वर्गणाएं जीव हर समय ग्रहण करता है, उसमें से तेजस शरीर बनता है और कार्मान शरीर यानी कर्म स्कंद बनता है, यानी आठ कर्म बनते हैं या सात कर्म।
ये जो है, ये जो कार्मान शरीर है, ये पांच तो मालूम हो गया, उसमें ये जो कार्मान शरीर है उसमें आठ मूल प्रकृतियों का स्कंद है।
हाँ, जिसको हम कार्मान, ये औदारिक शरीर है ना, ये औदारिक शरीर है, और वो औदारिक शरीर नाम कर्म जुदा था, वो कर्म का भेद था। वैसे कार्मान शरीर क्या है, आठ कर्मों का मिलकर जो कुछ जीव के साथ पड़ा है पूरा स्कंद, उसको कार्मान शरीर कहेंगे, और उसमें हर समय नए परमाणु कार्मान वर्गणा के आके कर्म रूप हो गए। वो क्यों हो गए, क्योंकि कार्मान शरीर नाम कर्म के उदय से उनका ग्रहण होकर उसको कर्म रूप परिणाम आएंगे, और वो कर्म पुराने कर्मों में जुड़ जाएंगे, उसका पूरा जो मिलकर स्कंद होता है उसको हम कार्मान शरीर कहेंगे। ये शरीर नाम कर्म जुदा है और ये शरीर जुदा है,
इससे जो योग शुरू होता है, इसके उदय
किसके,
कार्मण शरीर
नहीं, नाम कर्म के उदय,
नाम कर्म।
अरे कार्मण शरीर तो आठों कर्मों का मिलकर हुआ है, आठ कर्मों के उदय में वो नए कर्म नहीं आ रहे, नहीं समझे। देखो जीव कर्म का ग्रहण करता है, जरा जोर से,
जो आहार वर्णना उससे औदारिक वैक्रिय कभी बनते ना, तो वैक्रिय नारकी का सबसे आत्मयुक्त है और देव कर रहे थे, तो उनमें भी आहार वर्णना को फर्क हो।
हाँ, उसकी जो अलग अलग जाति है उसकी वैक्रिय शरीर नाम कर्म उनके भी है, उनके भी है विक्रिया वाला शरीर बनता है, उनके तो योग्यता अलग है, उनका तो दिव्य शरीर है, उसकी विशेषताएं हैं, और इनके तो उसमें ऐसा जो कुछ रोग सहित वगैरह वगैरह शरीर बनता है उसके यथा योग्य हो
जाए।
आहार वर्गणा के देखो, आहार वर्गणा टोटल है, उसमें शुरुआत के कुछ आहार वर्गणा उससे औदारिक शरीर बनता है, बीच वाले कुछ आहार वर्गणा ऐसी है कि उसके वैक्रिय शरीर बनता है, और फिर और ज्यादा सूक्ष्म वाली जो है उससे आहार शरीर बनता है। अभी उसमें वैक्रिय जाति जाति में भी डिफरेंस होगा ही ना, क्योंकि उसके कितने भेद हो गए जुदे जुदे। अभी सप्त धातु यानी वहां उस यथा योग्य जो उस शरीर की रचना होगी, क्योंकि उनके भी स्थिर और अस्थिर नाम कर्म का उदय है, तो उसमें भी उनके जो स्थिर रूप रहते हैं फिर अन्य अन्य रूप रहते हैं, उसकी पूरी शरीर की रचना जो यथा योग्य होगी। हम तो अभी यहाँ औदारिक शरीर की अपेक्षा जो वर्णन करते हैं, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, वैसे उनका अलग जाति का शरीर है, उनके जो यथा योग्य ऑर्गन होंगे वो उसमें वो बातें होगी, वो तो हम तो उसमें इमेजिन नहीं कर सकते, और जो शास्त्र में जितना आया है उतना ही हम कह सकते, अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहेंगे, ख्याल में आई ना, क्योंकि वो स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय है, तो उसका कार्य भी कुछ होगा ही वहां पर, उसमें भी जो कुछ परमाणु का जिस रूप से बंधे उसका परिणाम होता रहता है, उसको अस्थिर कहेंगे, और अपने रूप से रहना उसको स्थिर कहेंगे।
औदारिक शरीर नाम कर्म, कार्मण शरीर नाम कर्म और तेजस शरीर नाम कर्म, ये तीनों का उदय एक साथ होता है,
चल रहा है उदय
तीनों का एक साथ।
हाँ, क्योंकि कार्मण और तेजस के परमाणु हर समय ग्रहण कर ही रहे हैं, औदारिक शरीर के भी कर रहा है जी। वो योग जो एट ए टाइम एक होता है वो बात अलग है, कार्यो मनोयोग वचन योग बदलता है उसकी बात अलग है। देखो उसमें भी बहुत सारी सूक्ष्मता है, अभी उसके लिए तो धौला के नौवां दसवां भाग पढ़ना पड़ेगा, वो
प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ कि अवतारिक शरीर नाम कर्म की विच्छित्ति तो आगे हो गई, तीनों का उदय एक साथ हो सकता है, विच्छित्ति बन की अलग अलग हो जाएगी।
देखो क्योंकि बंध की विच्छित्ति कहाँ है, तो तेजस और कार्मण शरीर वैकिरिक शरीर के साथ भी बंध रहा है, औदारिक शरीर के साथ भी बंध रहा है, इसलिए देव और नाग की चौथे गुण स्थान तक ही है और वे ही औदारिक शरीर का बंध कर रहे समय दशा होने पर, तो उनकी बंधे की विच्छित्ति जल्दी हुई। पर हम चौथे गुण स्थान में तेजस कार्मण की बंध की विच्छित्ति नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य वो ऊपर के गुणस्थानों तक देवगति संबंधी बंध कर रहा है, उसका बंध आठवें में रुकता है, जहाँ वहाँ शरीर संबंधी बंध रुकेगा वहाँ तेजस कार्मण रुकेगी। हाँ, उनसे औदारिक शरीर की रचना औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में हो रही, जो कर्म आठ कर्मों का ग्रहण और उसमें उसमें ढालते रहना, नए नए उसमें बन जाना, वो कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से हो रहे। और तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस वर्गना का ग्रहण होकर वो तेजस वर्गना रूप बनती, तेजस शरीर रूप बनते। ये तीन की बात ख्याल में आई ना। देखो बंध होता है, हमने क्या देखा था बंध क्यों होता है, किस प्रकार के कितने बंध होते हैं, चार। कौन से? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभव बंध। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किससे होता है? योग से। और योग क्यों होता है? ये शरीर नाम कर्म के उदय, कर्म के लिए कारमान शरीर नाम कर्म के उद्देश्य। और स्थिति अनुभव क्यों बनता है? कषाय से, कषाय में हमने मिथ्या तो विरति प्रमाण कषाय सबको ले लिया, समझ में आती है ना बात। तो इसके कारण यहाँ परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है। और प्रश्न क्या जरा स्लोली प्रश्न पूछना। औदारिक शरीर नाम कर्म बंध की उच्छित्ति हुई। हाँ, हाँ, औदारिक शरीर नाम कर्म का नहीं, औदारिक शरीर बंध रहा है, बंध नहीं रहा, बंध रहा है औदार। देखो हम आपको औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। अब जो मुनिराज है, मनुष्यों के लिए औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध कहाँ रुक गया? बंध की विच्छित्ति दूसरे में। मनुष्यों के लिए पूछ रही थी, मनुष्यों के लिए दूसरे मनस्थान में वो बंध ना रुक गया है। अब वो जीव समय दृष्टि हुआ, वो बांध क्या रहा है? वैकरी शरीर नाम कर्म बांध रहा है, परंतु उसके उदय किसका चल रहा है? मनुष्य है तो उदय चलेगा औदारिक शरीर नाम कर्म का। कब तक? तेरहवें गुणस्थान के लास्ट समय तक। तो उसका कार्य क्या होगा? औदारिक शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करके इस शरीर रूप से ढालना हर समय चल रहा है। ये बंध किसका है? ये कर्म का बंध नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये शरीर है, उसको बंध नहीं कहे। औदारिक शरीर आहार वर्गना से औदारिक शरीर बंध रहा है। हाँ, वो औदारिक शरीर जीव के साथ अभी बंधा हुआ है, उसको ये बंध में नहीं गिन रहे। यहाँ कर्म बंध की चर्चा चल रही है, ख्याल में आया ना? ये जहाँ जीव के जितने प्रदेश है, मेरी भाषा में औदारिक शरीर के परमाणु लेके उसमें डिपोजिशन हुआ है और शरीर बना है। क्यों डॉक्टर? ये अपर की किडनी फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए और क्या क्या हो जाए, तो डॉक्टरों की टीम वहाँ आती है। और जब वो बने थे हार्ट, किडनी, लंग्स, कितने डॉक्टर आए थे बनाने के लिए? जीव कहीं से मरकर आया, औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण किए, पर्याप्ति हुई और सब सारे सिस्टम्स बन गए ऑटोमेटिक। ये सारा ही ऑटोमेटिक हो रहा है। जीव तो जुदा, ये सब जुदा है। ये समझते नहीं ना, इतना इतना डिफिकल्ट पढ़ना पड़ता है आपको, नहीं समझे? सिंपल मान जाते तो ये क्यों हम पढ़ाते आपको?
एक अनुभव भी देखिए।
तीन शरीर तो रहती है, और
समय ये शरीर जो है वो ऐसा ही उसके उदय में उसके परमाणु ग्रहण करते हैं।
शरीर के जो भंग बताए 15 उसमें भी संयोगी जो भंग बताए वो जैसे कार्मा
देखो अभी जीव तो एक है यहाँ पर उसका कार्मा शरीर भी बना है उसका तेजस शरीर भी बना है उसका औदारिक शरीर भी बना है। अभी ये भंग हमने यहाँ नहीं दिए फिर भी आपने प्रश्न पूछा तो जो औदारिक शरीर के साथ औदारिक शरीर जुड़ना या ये तेजस कार्मण औदारिक तीनों एक ही जीव के साथ जुड़े हुए हैं ना तो उनका आपस में भी किसी अपेक्षा वो विसंयोगी या एक संयोगी या प्रत्येक ऐसा जो भंग बताएंगे भंग है ना उसके संयोग रूप जो चीजें वो बताएंगे उसमें औदारिक का औदारिक के साथ औदारिक का वैक्य तेजस के साथ औदारिक का कार्मण के साथ वो ऐसी ऐसी बातें उसमें बता दें। वो विषय हमने यहाँ गौन करके वो छोड़ दिया है। आप ये क्रम से पढ़ेंगे या सुनेंगे सीधी तो उसमें ये सब बातें विस्तार से समझाई गई है। हाँ देह को अपना मान सबको अपना मानना छोड़ो तो मैं तो इन सबको जुदा है जानने वाला हूँ हाँ एक ही चीज है उसको नहीं मानते है तो जानते रहो अभी क्या क्या करें पूरी दुनिया की खबर रखने वाला अपने से बेखबर है मालूम है वो धर्मदास शुल्क की गोष्ठ वो मालूम है ना बात मालूम है नहीं मालूम गुरुदेव बहुत उनको याद करते उन्होंने सम्यक ज्ञान दीपिका लिखी ये चंद्रिका है वो दीपिका लिखी वो तो व्रती थे प्रतिमाधारी थे मेरे ख्याल से सप्तम प्रतिमा या कुछ शुल्क ही थे तो लोग तो उनका बहुत आदर विनय करते थे उन्होंने खुद लिखा है लोग मेरी पाद पूजा करते हैं पैर धोना नमस्कार करना बहुत उनका आदर सत्कार होता था और वो भी अपने को अच्छे मानकर सब जगह वो व्याख्यान वगैरह चलता था फटर वगैरह इस बाजू में उनका बहुत विहार हुआ था यानी वो चलता था उन्होंने खुद लिखा है उसमें वो पुस्तक पढ़ना आप कभी फिर ऐसे यहाँ का वहाँ ऐसा यहाँ से वहाँ विहार करते करते वो कारंजा पहुंचे थे वहाँ उस समय वो भंडारक थे वहाँ के तो उन्होंने कुछ वहां उन्होंने कुछ समझाया उनको कि तो सिद्ध की ये करते तो तू सिद्ध समान स्वयं है तो अपने को देखो वगैरह तो उन्होंने हाँ सुना वो फिर वहां से चले गए 12 साल के बाद फिर कहाँ कहाँ से फिर लौट आए फिर वो भट्टारक जी थे वहां उनके पास पहुंच गए तो क्या उसने तो अपने सिद्ध समान को जाना कि नहीं जाना तो क्या होता है क्या उनको कुछ समझ में नहीं कैसे जाना क्या करना कहते तू अंधा है कि देखने वाले को नहीं देखता तो इतनी चोट कर गई वो बात फिर वो तत्व विचार में चढ़ गया फिर उनको बाद में समय दर्शन हुआ। तो ये हम पूरी दुनिया को जानने वाले हम स्वयं हैं और हम स्वयं को नहीं जान सकते ये कैसी बात हो सकती है। हाँ उसमें भी बात आती है वो उसमें भी लिखे इंट्रोडक्शन में क्या करें ये कारमान शरीर नाम कर्म से ये सब चल रही बात है ना आगे बढ़ेंगे अभी आबादा किसको कहना उसकी बात चल रही थी कि कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में क्या हो रहा है कि जीव के सर्वात्म प्रदेशों में कर्म को ग्रहण करने की शक्ति सामर्थ्य होती है ये शक्ति सामर्थ्य ने सारा विभाव है वो हाँ नहीं तो देखो हम कितने शक्तिवान हैं पुद्गल को परिणमा सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं हुआ कि जीव में वो सभी आत्म प्रदेशों के प्रदेशों में वो योग उत्पन्न होता है और वहां कर्म का बंध होता है तो कर्म का बंध होता है तो उसकी जो निषेक रचना होती है उसमें कुछ काल के बाद वो उदय योग्यता रूप होते हैं उसको कहते हैं आबाधा ये आबाधा की डेफिनेशन चल रही है ये पेज नंबर 174 पर पढ़ रहे थे हम उस नीचे का भावार्थ पढ़ते थे कर्म प्रकृति का बंद होने के पश्चात यानी जो यथा योग्य 7 या 8 कर्म बंधे उसके पश्चात अभी उस आयु कर्म की बात यहां नहीं लेना क्योंकि उसकी आबादा प्रोपोर्शनेट नहीं है जितने काल तक वो उदय रूप या उदीर्णा रूप नहीं होती उतने काल को आबाधा काल कहते हैं ये उदय की आबाधा जुदी है उदीर्णा की आबाधा जुदी है परंतु आबाधा शब्द का अर्थ बता रहे हैं वहां फल देने रूप परिणाम ना तो उदय कहलाता है। जो बंधे हुए परमाणु जब छूटकर जीव प्रदेश से वो निकल जाते हैं, हो सकते वहीं पड़े रहे, हो सकते पूरे दूर कहीं लोकाकाश के दूसरे एंड में चले जाए, तो वो जीव के अभी कर्म नहीं रहे, वो कहाँ जाते उससे कुछ मतलब नहीं है। कर्म से अकर्म रूप हो गए, यानी उसको जब निर्जर उसको फिर जाते हैं उदय रूप होते हैं, तब उसका फल मिलता है। तो फल देने रूप परिणाम ना तो उदय कहलाता है। काल आए बिना अपक्व कर्म का पक्व होना उदीर्णा कहलाता है। जैसे हमने देखा था ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु ऐसे अपकर्षण कहने में उसकी स्थिति घटना, और उदय ने आने वाले परमाणु के साथ उसका भी उदय हो जाना, उसको कहेंगे उदीर्णा। क्योंकि उनके स्थिति कितनी पड़ी थी, बहुत ऊपर पड़ी थी, मान लेते ना 1000 वर्ष ऊपर पड़ी थी, और वहां से वो नीचे आकर उदय जो सत्ता में जो उदय रूप निषेक थे उसके साथ उसका उदय हुआ, तो हम क्या कहेंगे उसकी उदीर्णा होगी।
वो सत्ता सबसे अंतिम निषेक से भी
आ सकते हैं, अंतिम निषेक से भी आ सकते हैं, बिल्कुल उदयावली में आकर खेल सकते हैं। सभी निषेकों में से कुछ कुछ परमाणु आते ही है, यानी कुछ तो अपने ही नीचे कुछ निषेकों में जाएंगे, कोई और नीचे जाएगी, कोई एकदम नीचे भी जाएंगे। 175 पेज पर देखो, आयु कर्म को छोड़कर इसलिए कहा क्योंकि उसका प्रपोर्शन आबादा का कितनी स्थिति बनती उससे कुछ रिलेशन नहीं है। आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों की उदय की अपेक्षा आबादा, ये उदय शब्द लगा दिया, 1 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति की 100 वर्ष जानना, जैसे हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 1700 यानी 7000 वर्ष देखा, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 अवशेष स्थिति की इसी प्रतिभाग आबादा जाना, यानी इसी प्रोपोर्शन में, इसी प्रतिभाग में यानी इसी अनुपात में, इसी प्रोपोर्शन में, जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा तो 3000 वर्ष, 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो तो 2000 वर्ष, ये उसी के लिए त्रैराशिक बताया उन्होंने। अब जहां अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंदी है तो उसकी आबादा कितनी होती है, तो कहते हैं अंतर्मुहूर्त। तो मुहूर्त के प्रमाण में उन्होंने किया, जैसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर के जहां स्थिति बंद है वहां 100 वर्ष की आबादा होती है, यानी 100 वर्ष के लिए वहां स्थिति कितनी बंदी थी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। तो 100 वर्ष में उन्होंने यहाँ क्या बताया वो मैं अपनी शब्दों में बताती हूँ, उन्होंने उसके मुहूर्त बना दिए। 100 वर्षों में मुहूर्त समझते हैं क्या, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है जिसको 2 घड़ी कहते हैं, और उससे 1 समय कम 2 समय कम और सभी कम कम करते जाओ, वो सारे अंतर मुहूर्त कहलाते हैं। यह मुहूर्त का प्रमाण निकालना, 100 वर्ष के लिए स्थिति कितनी बंदी, अंत कोड़ा कोड़ी सा, तो 100 वर्ष के मुहूर्त करेंगे, तो मुहूर्त उन्होंने करके बताया है। तो मुहूर्त उन्होंने बताया है 100 वर्ष में 1,80,000 मुहूर्त होते हैं, ये उन्होंने गणित करके बता दिया है। तो उसमें कितनी बंदेगी स्थिति, इसका ऐसा प्रोपोर्शन उन्होंने कर दिया, तो उसका उन्होंने फल भी बता दिया। पेज नंबर 176 पर हम डायरेक्ट उसके फल देखेंगे, सेकंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन, यानी जहां एक मुहूर्त यानी 48 मिनट की आबादा होती है वहां स्थिति कितनी बनती है, तो कहते हैं 9,25,92,592 सागर, और एक सागर के 108 भागों में 64 भाग, यानी 64/108 इतनी स्थिति बनती है, उसका प्रोपोर्शन बताया। अभी इस प्रोपोर्शन में सबके समझ लेना, जो अंतर्मुहूर्त के थे ना, एक सागर की स्थिति बनती तो भी अंतर्मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त की संस्थिति बनती तो भी अंतर्मुहूर्त, इसमें सब उसका प्रोपोर्शन निकाल लिया। हाँ वो दोपहर में बताया, ये जो 70 कोड़ा कोड़ी है ये इसको प्रमाण राशि कहते हैं, यहाँ जो लिखते हैं उसको फल राशि कहते हैं, ये हमारी इच्छा राशि है, और जो हम उत्तर निकालते हैं ये हमारी लब्ध राशि है। अभी हम आयु कर्म की आबादा के बारे में देखेंगे। आयु कर्म की आबादा कैसे गिनना है, जिस समय से आयु बंध शुरुआत की वहां से लेकर उस भव के अंत समय तक, वो उसकी आवारा कहलाएगी, क्योंकि आयु का उदय कब शुरू होगा? इस वर्तमान जो हमारी भुज्यमान आयु हम भोग रहे हैं वो समाप्त हो जाएगी, अंतिम निशे खिर गया, तो ये हमारा मनुष्य भोग का अंतिम समय। दूसरे समय जो बंधी हुई आयु का उदय इमीडिएट चालू हो जाता है, बीच में कोई रुकना नहीं पड़ता है, कोई इधर उधर लटकते नहीं रहता, या अपने घर वापस आकर कोई घूमता है, कुछ कुछ देखता है, कौन रो रहा है, कैसे क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता है। विग्रह गति से हम समय नहीं, आयु का उदय चालू हो गया, गति का भी उदय शुरू हुआ, आयु का भी उदय शुरू हुआ पहले ही समय से, यानी जितनी आयु बांध के गया है वो विग्रह गति के समय भी उसमें गिनेंगे। कटिंग शुरू, यानी कोई बीच में देखो, यहाँ मनुष्य आयु है, वहां देवायु चल रही, मान लेते यहाँ से देव में गया, वो बीच में मरने को कहां फुर्सत मिली उसको, यहाँ मनुष्य रूप से जी रहा था, वहां देव रूप से जी रहा है, अब यहाँ पर भी जी रहा है, वहां पर भी जी रहा है, मरा किधर वो? फिर रो क्यों रहे हम? रोने शरीर की ममता, शरीर मैं हूँ, रो रहे, रो रहे शरीर की ममता से नहीं रो रहे। अभी हमारे कुछ सहूलियत जो की फैसिलिटी जो कम हो गई, अभी जो कुछ रोना जिसका जो कारण से होता वो रोने, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। रोने की आदत पड़ी है, कहते हैं ना दुखी होने की आदत हो रही है, कल्पना कल्पना कर करके स्वयं दुखी हो रहा है, जो सुख का सागर स्वयं है वो कल्पनाएं उठा उठा कर रो रहा है, हर समय कुछ न कुछ कल्पनाएं बनाते रहता है, क्या करें। आयु कर्म की आबादा की बात चल रही थी, तो उत्कृष्ट आबादा कब कहेंगे हम, क्योंकि मनुष्य जो कर्मभूमि का मनुष्य और तिर्यंश उसकी उत्कृष्ट आयु तो 3 पल्ले की होगी, परंतु वहां आयु का बंधन अंतिम 9 महीने कहीं 6 महीने से दोनों पद्धति से आता है, अंत में होता है, तो उसकी तो आबादा उतनी कहेंगे हम 6 महीने या 9 महीने। परंतु करोड़ पूर्व की आयु वाला जो मनुष्य है उसका 1/3 बाकी है आयु का, तब वो आयु का बंद कर सकता है नेक्स्ट आयु का, तो उसकी आबादा कितनी कहेंगे हम? हाँ, पूर्व कोटि का 1/3, 2/3 तो बीत गई तभी उसने आयु बांधी, 1/3 बाकी है, तो 1 करोड़ पूर्व यानी कितना है, गुरुदेव हमेशा बताते थे याद है ना, 1 करोड़ पूर्व में कितने वर्ष होते हैं, बोलो हाँ 70 लाख, यानी वो गुजराती वाला 70 नहीं हिंदी वाला 70 70,56,000 करोड़ 7056, ऊपर 3 जीरो तक हजार के लिए और 7 जीरो तो करोड़ के लिए, यानी 7056 के ऊपर 10 जीरो, इतने वर्ष, अभी उसका 1/3 करो, हाँ 23,52,000 करोड़ कुछ हो जाएगी, इतनी उसकी आबादा कहलाएगी, समझ में आती बात? हाँ देखो, आयु कर्म की उत्कृष्ट आबादा पेज 176 लास्ट, कोड़ी पूर्व वर्ष का 3रा भाग प्रमाण जानना, जगन्य आबादा किसकी आयु की, अंतर्मूल प्रमाण है, अथवा क्योंकि आयु का बंध कब हो सकता है, अभी वो त्रिभाग में बंधेगा, वहां नहीं बंधे गया, बंधेगा तो भी नेक्स्ट अवसर कब होगा, त्रिभाग का त्रिभाग, त्रिभाग का त्रिभाग, त्रिभाग का करगा, ऐसे करते करते आयु के अंतर्मूल पहले उसका आयु का बंधन हो सकता है, वहां भी किसी का नहीं बंधेगा तो ऐसे अंतर्मूर्त पहले बनता है कि उसके बाद आवली का असंख्यात भाग शेष रहता है, जिसको कहते असंक्षेपाधाम, यहां लिखा देखो, अथवा किसी आचार्य के मन से असंक्षेपाधा प्रमाण है, संक्षेप अर्थात थोड़ा, अधा अर्थात काल नहीं होने के कारण उसे असंक्षेपाधा कहते हैं, यह काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, यानी आयु का बंद होकर रुका और ये असंक्षेपाधा काल बीत गया और फिर उसका यह मरण हो गया, ये हो सकता है किसी जीव का।
परिणाम
नहीं वो भी आयु के योग के परिणाम होगी वहां पर। आयु कर्म की आबाधा ऐसी ही है, अन्य कर्मों की तरह स्थिति के अनुसार आबाधा नहीं है, स्थिति के प्रपोर्शन में आयु की आबाधा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ये उसका अर्थ होता है। अब ये उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा, नीचे का जो 159 है उसको देखते हैं। उदीर्णा का अर्थ देखा था ना हमने, जो ऊपर के नीचे उसकी स्थिति ज्यादा है, उसमें से कुछ परमाणु अपनी स्थिति घटकर उदयावली में आकर उसका भी उदय होता है, उसको हम उदीर्णा कहते हैं। तो ऐसा उदीर्णा अर्लीएस्ट कब हो सकती है? बंद के बाद, तो कहते हैं अवली के पश्चात। बंद के बाद एक अवली तक उन बंधे हुए परमाणु में कोई चेंजेस नहीं होते, ना उनका संक्रमण होता है, ना उनकी उदीर्णा होती है, ना आकर्षण होता है, ना उत्कर्षण होता है, कुछ भी नहीं होता। ये कह रहे हैं उदीर्णा के आश्रय से आयु को छोड़कर सात मूल प्रकृतियों की आबाधा एक अवली का प्रमाण है, क्योंकि आयु की आबाधा तो निश्चित है, उसका जब उदय होगा तब उसकी उदीर्णा चालू हो जाएगी। आयु में भी उदय एक एक निषेक का होता है, ऊपर जो बचे हुए निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु उदय में आ सकते हैं अपनी स्थिति घटकर, उसको सामान्य उदीर्णा कहते हैं। वो कद्दीघात वाली बात नहीं है, वो घात अलग बात है और उदीर्णा होना बात अलग है। उदीर्णा हर कर्म में जिसका उदय है उसकी उदीर्णा होती रहती है। हाँ, उदय की अपेक्षा जो आबाधा काल हमने मिथ्यात्व कर्म में 7000 वर्ष का देखा, वही बंधा हुआ मिथ्यात्व कर्म बंधने के बाद एक अवली के बाद नियम रूप से उदीर्णा होकर कुछ परमाणु उदय में आएगी ही आएगी, आएगी ही ऐसा कहेगी। देखो उदीर्णा के आशय से ये हमने पढ़ा, आयु को छोड़कर सात मूल प्रकृतियों की आबाधा एक अवली काल प्रमाण है, उसका भावार्थ यदि कर्मों का उदय आता है तो बंध के पश्चात पूर्वोक्त प्रमाण आबाधा काल व्यतीत होने के पश्चात उदय आता है। पूर्वोक्त प्रमाण ने जो हमने 7000 वर्ष देखा था 70 कोड़ाकोड़ी के लिए, वो पूर्वोक्त प्रमाण। और यदि कर्म उदीर्णा रूप प्रवर्ते तो बंध के पश्चात एक आवली प्रमाण काल बीतने पर भी उदीर्णा रूप होता है, इसलिए उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा एक आवली प्रमाण कही। आयु कर्म की उदीर्णा जिस आयु को भोग रहा है उसी आयु की होती है, बध्यमान अर्थात आगामी उत्तर भोग के आयु की नियम से उदीर्णा नहीं होती, क्योंकि उसका उदय ही जब शुरू होगा ये पर्याय खत्म होगी तब, और तब जाके उसकी उदय के साथ उदीर्णा भी होगी, उसमें कोई उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, बाद में उदीर्णा नहीं होगी। अभी हमारे मनुष्यायु का उदय चल रहा है हर एक समय एक एक निषेक, तो हमें जो हमारे जो आयु के शेष निषेक बाकी है उसमें से कुछ थोड़े थोड़े परमाणु इसके साथ भी उदय में आ रहे हैं, तो उसकी उदीर्णा
है। इधर कोई आबादा नहीं है अभी,
बुद्धिमान तो ऑलरेडी उदय चालू हो गए ना, आबादा तो पूर्व भाव में चली है, हमने पूर्व भाव में जब मनुष्यायु बांधी थी हाँ, तो जब तक मरण नहीं हुआ था तब तक उसकी इस आयु की आबादा उस भाव में चली है, वर्तमान में तो बस उसका उदय ही चल रहा है। कैसे कैसे होगा, उदय बिना उदीर्णा नहीं होती, उसका आबादा काल चल रहा है, आयु में नहीं होती, अन्य कर्मों में, क्योंकि अन्य कर्म क्या है बंधने के बाद पड़े हैं ना, भले उसकी आबादा 7000 वर्ष की है, उदय की अपेक्षा वो निशे की भाव में उदय में नहीं आने वाला हमारा, परंतु उदीर्णा की अपेक्षा पुराने बंधे हुए के साथ उसका उदय होता है। आयु की वो आगामी जो आयु बांधी है उसका उदय ही नहीं ना, उसका उदय तो बाद में आएगा, जब उदय होगा तब उदीर्णा होगी। उदीर्णा के लिए उदय का नियम है ना, जिसका उदय चल रहा है उसी को उदीर्णा कहेंगे हम, क्योंकि उदय में आने वाले के साथ साथ उसको फिर रहे हैं। अभी हमारा इस आयु का उदय चल रहा है तो हमारे इस आयु भुज्यमान आयु के निषेकों में से कुछ परमाणु उदीर्णा हो रहे हैं, अभी रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। बोलो 2400।